Iran Radio Podcast.
सन 1209 हिजरी में शिराज के गवर्नर ने जंदिया राजवंश के अंतिम शासक के साथ विश्वासघात किया और जंदिया शासन की राजधानी शिराज को आगा मोहम्मद खान काजार के हवाले कर दिया। इसी विश्वासघात के कारण जंदिया राजवंश का अंत हो गया। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 38वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। हम बात कर रहे थे जंदिया राजवंश के अंत की। एक दिन करीम खान जंद के चाचा उनसे मुलाकात करने शिराज पहुंचे। करीम खान ने उनकी मेज़बानी और औभगत पर कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन्हें दरबार की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने का निमंत्रण दिया गया। अपने भतीजे की शान व शौकत और रुतबा देख कर वो गुस्से से लाल पीले हो गए और बोले, करीम खान, कल रात मैंने ख्वाब में देखा कि तुम्हारे पिता और मेरे भाई स्वर्ग में नहरे कौसर के किनारे खड़े हैं और इमाम अली अलैहिस्सलाम उन्हें कौसर का पानी पिला रहे हैं। करीम खान ये सुनकर नाराज़ हो गया और उन्हें बैठक से निकालने और फिर शहर से निष्कासित करने का आदेश दिया। कबीलों के सरदारों ने उनसे इस हिंसक व्यवहार का कारण पूछा। करीम खान ने कहा, मैं अपने पिता को जानता हूँ, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों से कौसर के पानी का एक प्याला भी पीने के लायक नहीं है। ये आदमी चापलूसी और खुशामद के ज़रिए ध्यान आकर्षित करना चाहता है और अगर चापलूसी और खुशामद उनकी आदत बन जाएगी तो राजा अहंकारी हो जाएगा और प्रजा के मामले कभी व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे। जब जंदिया राजवंश के अंतिम शासक लुत्फ अली खान को आगा मोहम्मद खान काजार ने कैदी बना लिया तो काजार ने उसके बाजूबंद को उतारने का आदेश दिया। इस बाजूबंद में दो कीमती रत्न चमक रहे थे। उनमें से एक सी ऑफ लाइट डायमंड था और दूसरा मून क्राउन रूबी। सी ऑफ लाइट डायमंड दुनिया का सबसे बड़ा पिंक डायमंड है और उसके बाद सबसे कीमती रत्न मून क्राउन रूबी है। इसके बावजूद खान काजार ने इन दो रत्नों को देखकर कुछ खास खुशी का इजहार नहीं किया। वो जंद शाही परिवार के बाकी खजाने की तलाश में था लेकिन उनका खजाना कुछ खास नहीं था। दरअसल दूसरे शासकों के विपरीत करीम खान जंद को खजाना जमा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका मानना था कि अगर वो देश की सारी दौलत अपने ख़जाने में जमा कर लेगा तो व्यापार और लेन देन फीका पड़ जाएगा। उसकी मौत के वक्त ख़जाने में सिर्फ 7 लाख तुमान थे जिसका अधिकांश भाग उसके उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष में नष्ट हो गया। आगा मोहम्मद खान को युद्धों को जारी रखने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए वो धन इकट्ठा करने में लगा हुआ था। अपनी एक यात्रा के दौरान एक गाँव में उसने एक फ़कीर को देखा तो इतना गुस्सा हुआ कि एक जल्लाद को उसके कान काटने का आदेश दे दिया। फ़कीर जल्लाद से विनती करता रहा कि सिर्फ उसका आधा कान काटे, बदले में वो उसे कुछ पैसे भी दे देगा। आगा मोहम्मद खान ने उसकी बात सुन ली और उसके पास जाकर कहा कि अगर इसमें कुछ पैसे और बढ़ाकर मुझे दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। फ़कीर इस बेरहम बादशाह के मजाक से आश्चर्य में पड़ गया और उसके पैरों पर गिर कर उसे माफ़ करने के लिए शुक्रिया अदा करने लगा। उसके बाद वो उठा और वहाँ से चलने लगा तो काजार खान के सिपाही उसके पीछे दौड़ने लगे ताकि उसे समझा सकें कि उसके कान नहीं काटने के बदले में उसे कुछ तूमान अदा करने पड़ेंगे। आगा मोहम्मद खान अपनी फौज को हथियारों से लैस करने के लिए कम से कम पैसे को भी महत्वपूर्ण समझता था और वो जॉर्जिया जैसे उपजाऊ क्षेत्रों को ईरान से अलग होने की घटना को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जॉर्जिया कॉकेशस क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ईरान के इस हिस्से के शासक ने 1197 हिजरी में जब करीम खान के कमज़ोर उत्तराधिकारी देश की रक्षा करने में असमर्थ थे तो रूस के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर कर लिए और रूसी संरक्षण हासिल कर लिया। आगा मोहम्मद खान ने जॉर्जिया के शासक को एक पत्र लिखकर धमकी दी कि अगर उसने रूस के साथ अपने संबंध नहीं तोड़े तो वो रूस के खिलाफ अभियान शुरू कर देंगे। जॉर्जियाई शासक ने उत्तर दिया कि वो केवल रूस की रानी कैथरीन को ही अपना सुल्तान मानता है और ईरान के शाह से उसका कोई संबंध नहीं। ये उत्तर पाकर आगा मोहम्मद खान ने जॉर्जिया पर आक्रमण करने के लिए 60,000 सैनिकों को तैयार किया, लेकिन उसने अपना इरादा पूरी तरह से गुप्त रखा ताकि रूस जॉर्जियाई लोगों की सहायता के लिए आगे न आ सके। काजार खान के हमले से जॉर्जियाई लोग आश्चर्यचकित हो गए और तिब्लिसी आसानी के साथ काजार घुड़सवार सेना के नियंत्रण में आ गया। आगा मोहम्मद खान ने तिब्लिसी के लोगों के नरसंहार का आदेश दिया ताकि कोई भी ईरानी सरकार से आज़ादी और अलगाव की मांग करने की हिम्मत ना कर सके। शहर में 9 दिनों तक नरसंहार चला। सभी चर्चों को ध्वस्त कर दिया गया और पादरियों के हाथ पैर बांध कर नदी में फेंक दिया गया। लगभग 15,000 लोगों को बंदी भी बना लिया गया। इस अभूतपूर्व रक्तपात के बाद आगा मोहम्मद खान ने वापसी का इरादा किया। उसे नहीं पता था कि इस नरसंहार ने कॉकेशस के ईसाई लोगों के दिलों में ईरानियों के प्रति गहरी नफरत पैदा कर दी थी, एक ऐसी दुश्मनी जिसने उन्हें रूसियों के करीब ला दिया। और कुछ समय बाद कॉकेशस के ईसाइयों के प्रति इस नफरत से रूस को सबसे अधिक फायदा हुआ। तिब्लिसी में नरसंहार के बाद आगा मोहम्मद खान ने खुरासान का रुख किया ताकि नादिर शाह अफशार के पोते शाहरुख से उसके दादा का खजाना ले सके। वो नादिर का बड़ा खजाना हासिल करके उत्तर पूर्वी ईरान पर चढ़ाई करना चाहता था, लेकिन कॉकेशस और आजरबाईजान पर रूस के हमले की खबर सुनकर तेजी से तेहरान वापस लौट आया। जॉर्जिया का समर्थन करने और तिब्लिसी नरसंहार का बदला लेने के लिए रूसियों ने कई उत्तरी ईरानी शहरों पर कब्जा कर लिया और अर्दबील के उत्तर में मोगान मैदान में डेरा डाल दिया। ठंडे मौसम के कारण रूसी सैनिक मोगान मैदान में ठहर गए। वे तेहरान की ओर बढ़ने के लिए सर्दियों के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। आगा मोहम्मद खान को ये नहीं पता था कि विशाल रूसी सेना का सामना कैसे किया जाए, जो बहुत शक्तिशाली तोपखाने का इस्तेमाल कर रही थी। उसे बताया गया कि जॉर्जियाई लोगों का समर्थन सिर्फ एक बहाना है और रूस की महारानी कैथरीन का इरादा पूरे ईरान पर कब्जा करने और फारस की खाड़ी के तट तक पहुँचने का है। ये तट रूसी वैश्विक व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ठंडी सर्दियों की एक रात में काजार खान भड़कते हुए शोलों की एक भट्टी के पास बैठा हुआ था और इस शक्तिशाली दुश्मन के बारे में सोच रहा था। खान चिमटे से कोयलों को उठाता था और उन्हें पलट देता था। वो घंटों यही करता रहा। जब सुबह के अजान की आवाज़ आई तो उसने गुस्से से चिमटे को अंगारों में पटक दिया और कहा, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, या तो उसे मार डाल या मुझे नष्ट कर दे। कुछ समय बाद कैथरीन की मौत की खबर आगा मोहम्मद खान के शिविर तक पहुंची, लेकिन काजार खान को ये नहीं मालूम था कि ईश्वर उसे भी नष्ट कर देगा। कैथरीन के बाद जो भी सत्ता में आया उसने ईरान के साथ युद्ध को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि रूसी जनरलों को ईरान से हटाने का आदेश दिया। कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसियों के हटने के साथ काजार खान ने कॉकेशस में फिर से अभियान चलाने और रूस के साथ सहयोग करने वाले स्थानीय शासकों को दंडित करने की तैयारी की। तिब्लिसी नरसंहार की यादें फिर ताज़ा हो गई। पूरे कॉकेशस में आतंक का राज था। आगा मोहम्मद खान के पास एक नौकर था जो हर रात खान को तब तक किताब पढ़कर सुनाता था जब तक वो सो नहीं जाता था। एक रात जब काजार खान कॉकेशस में था और युद्ध की तैयारी कर रहा था तो नौकर, जो थका हुआ और सुस्त था, आधी रात तक उसके लिए किताब पढ़ता रहा। जब उसे लगा कि खान सो गया है तो उसने किताब बंद कर दी और उसे अंगीठी पर रख दिया। आगा मोहम्मद खान, जो अभी तक सोया नहीं था, बोला, बेवकूफ़, ये किताब रखने की जगह है। नींद में डूबे हुए नौकर ने आलस से किताब अंगीठी से उठाकर ताक में रख दी। खान ने फिर कहा, मूर्ख, क्या ये किताब रखने की जगह है? नौकर ने असमंजस और घबराहट में इधर उधर देखा और किताब को दूसरे ताक पर रख दिया, लेकिन खान की आवाज़ फिर कमरे में गूंजी, पागल कहीं के, क्या वो किताब रखने की जगह है? नौकर अचानक चिल्लाया, तो फिर किताब रखने की जगह कहाँ है? पागल अनाथ आदमी, नौकर का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने ये शब्द अपने जीवन में मिले सबसे निर्दयी व्यक्ति से कहे थे। उसकी नींद उड़ गई थी। वो खान के चरणों में गिर पड़ा और मन में आए हर शब्द से क्षमा की भीख मांगने लगा। आगा मोहम्मद खान ने अपने पैर पीछे खींच लिए और उसे कहा, उठ। वो आदमी तुरंत खड़ा हो गया। खान ने कहा, जाकर देख कि कमरे में कोई है या नहीं। वो आदमी जल्दी से बाहर गया और कुछ क्षण बाद वापस आया। उनके आसपास कोई नहीं था। खान ने कहा, मैं तुझे दो कारणों से माफ़ करता हूँ। पहला, तू सही था और दूसरा, किसी ने तेरी बातें नहीं सुनी। اگر تو نے اس بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو اسی پل تیری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نوکر آغا محمد خان کے کمرے سے باہر نکلا اور سوچنے لگا کہ کل رات وہ اس کا سامنا کیسے کرے گا۔ شاید خان کو اگر اسے معاف کر دینے کا افسوس ہوا، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ خان سے اس کی یہ آخری ملاقات تھی۔ خان کے تین نوکر کہ جو آغا محمد خان کے خربوزے کھانے کے آروپ میں اگلے دن پھانسی پر لٹکائے جانے والے تھے، آدھی رات کو اس کے کمرے میں گھس گئے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 1211 ہجری میں آغا محمد خان کی موت کے بعد اس کا بھتیجا فتح علی تخت پر بیٹھا۔ اس نے کاکیشیائی لوگوں کو دنڈت کرنے کا پریاس نہیں کیا، لیکن ایک انگریزی کمپنی دوارا دیے گئے پرلوبھن کے کارن ایک نیا یدھ شروع کر دیا۔ اس نے تیزی سے اس یدھ کی تیاری شروع کر دی جس کی اسے کوئی آوشکتا نہیں تھی، ایک ایسے دیش کے خلاف یدھ جو ایران کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ فتح علی شاہ کے شاسن کے شروعاتی دنوں میں بھارت کے اکثر علاقوں پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھارت کا اصلی شاسک مانا جاتا تھا۔ انگریز اچھی طرح سے اپنے پڑوسیوں اور یورپی پرتدوندیوں کو لے کر سچیت تھے تاکہ کوئی دوسرا اس دیش پر نظریں نہ گاڑ سکے۔ افغانستان ایک ایسا پڑوسی دیش تھا جس کا راجہ زمان شاہ بھارت پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بو شہر میں اپنے پرتنیدھی کو پورن ادھیکار کے ساتھ تہران بھیجا تاکہ جتنا پیسہ دینا چاہے دے اور انہیں افغانستان پر حملے کے لیے تیار کرے۔ مہدی علی خان نے فتح علی خان سے بات کی اور ایرانی شاہ کو ایک سکہ دیے بنا ہی افغانستان پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ اس نے فتح علی شاہ کو زمان شاہ کے شکتی شالی ہونے سے ڈرایا اور وشیش کر افغانستان میں شیعہ مسلمانوں کو پہنچنے والی یاتناؤں کا مدعا اٹھایا تاکہ دونوں دیش آپس میں ٹکرا سکیں۔ اس سے پہلے بھی کئی بار انگریز شیعہ اور سنی کا مدعا اٹھا کر مسلمانوں کے بیچ پھوٹ ڈال چکے تھے۔ 1214 ہجری میں زمان شاہ نے بھارت پر چڑھائی کر دی اور پشاور اور لاہور شہروں پر قبضہ کرتے ہوئے 1215 میں دلی کے دروازے تک پہنچ گیا۔ ادھر فتح علی شاہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور ہرات اور قندھار شہروں پر قبضہ کر لیا۔ زمان شاہ اپنی فوج کو بھارت سے واپس لوٹانے پر مجبور ہو گیا، لیکن قندھار کے نکٹ فتح علی شاہ نے اسے پراجت کر دیا۔ ایران کے شاہ نے افغانستان کی سطح زمان شاہ کے بھائی محمود کو سونپ دی اور اس یدھ میں کچھ حاصل کیے بنا اپنے دیش واپس لوٹایا۔ بھارت میں اپنی حکومت کو ایک بڑے خطرے سے بچانے میں سفلتا حاصل کرنے کے کارن انگریز بڑے خوش تھے، لیکن ابھی پوری طرح سے وہ آشوست نہیں تھے۔ برٹین کے دو یورپی پرتدوندی فرانس اور روس ایک جٹ ہو کر بھارت پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کی سیناؤں کو ایران سے ہو کر گزرنا تھا۔ انگریزوں نے تیزی سے کیپٹن جان میلکم کو ایران بھیجا۔ میلکم فتح علی شاہ کے لیے بہت قیمتی اپہار لے کر پہنچا اور اس کے ساتھ ایک سمجھوتا کرنے میں سفل ہو گیا۔ اس سمجھوتے میں ایران نے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی افغانی ہندوستان پر حملہ کریں گے، ایران ان پر حملہ کر دے گا اور دوسری اور فرانسیسیوں کو ایران سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بدلے میں انگریزوں نے ایرانی شاہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر فرانس ایران پر حملہ کرے گا تو وہ اس کی مدد کریں گے۔ فتح علی شاہ نے ایسی استھتی میں یہ سمجھوتا کیا جب فرانس کسی بھی طرح سے ایران کے لیے خطرہ نہیں تھا، کیونکہ جو دیش ہمیشہ ایران کی اتری سیما پر خطرہ بنا ہوا تھا وہ روس تھا۔ کیپٹن میلکم نے یہ سمجھوتا کر کے برٹش سرکار کو اتنا خوش کر دیا کہ اس نے اسے سر کا خطاب دیا، جس کے بعد وہ سر جان میلکم کے نام سے مشہور ہوا۔ فتح علی شاہ ایران کے سب سے عیاش بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ وہ اپنا زیادہ سمے حرم سرا میں مہیلاؤں کے بیچ گزارتا تھا۔ ایسے شاہ کے پاس راجنیتک گھٹناؤں اور وشیش کر یورپی دیشوں سے یدھ کی سمیکشا کا سمے نہیں تھا، اور یہ کوئی آشچر کی بات نہیں تھی کہ جب ایران کو سب سے بڑا خطرہ روس سے تھا، وہ فرانس کے خلاف برٹین کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہا تھا۔ دوستو، جو پوڈ کاسٹ آپ نے سنا وہ ایران ریڈیو دوارا تیار کیا گیا تھا۔ اگر آپ دوسرے دلچسپ وشیوں پر بھی پوڈ کاسٹ سننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ایران ریڈیو .ir/hi پر وزٹ کر سکتے ہیں۔